समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यो में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़ी जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
नमस्कार और धन्यवाद।
श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112331444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कम्प्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कम्प्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
नमस्कार मैडम।
नमस्कार।
हाँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी ने दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब यह है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, हमें अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया आपका वर्कर है। धन्यवाद।
धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
जी, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन, एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की जरूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पे स्टैंप होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पे आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
सॉरी।
लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी।
जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए।
जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एन्यूमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं, और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशनी जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे, और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
जी और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
नमस्कार मैडम जी।
नमस्कार।
हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
नमस्ते। प्रणाम।
मैम मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहां पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
जी नमस्कार।
नमस्कार
जी। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनके पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
वैशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहां पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं। जी।
अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं, एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
जी नमस्कार।
नमस्कार
जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता। तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है। तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा जवालिया गढ़वीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
जी नमस्कार।
हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
नमस्ते
जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
जी नमस्कार।
नमस्कार
मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
नमस्ते मैम।
जी नमस्कार।
आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
जी नमस्ते।
मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगनक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगनक को काफी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगनक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जेजे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगनक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है
जी।
जो बेघर होते हैं बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है
जी। तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है, जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-0481 पर और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रिशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है
जी। अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
जी।
लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था, क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए और बाकी सारे डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए
जी। बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। विकास जी,
हाँ जी, हमारे 2 मकान एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी, और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते वहाँ पे आपकी गणना होगी।
हाँ विशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहां पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहाँ पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे रहते वहां पे आपकी गिनती होगी।
जी, और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा।
जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
नमस्कार मैम।
नमस्कार
सर, जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन कंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या।
जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है।
मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करे इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियां बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
जी बिल्कुल रुशाली जी,
क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।